आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोली, सबको मिल गया पुस्तक में 1.3.2। यस्यांभसी शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजाद् नाभिहृदाम्बुजादासी ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। तो ये तो बड़ा स्पष्ट श्लोक है। यस्यां भसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः। यस अंभसी यानी कि जो ब्रह्मांड का जल है जिसे हम लोग गर्भ जल कहते हैं, यह तो आप लोगों को इस चार्ट में बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। गर्भ जल दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें भगवान विष्णु दिख रहे हैं सोते हुए, यह है गर्भोदाकाश विष्णु। और क्या करते हैं? योग निद्राम वितन्वतः, अपनी योग निद्रा का विस्तार करते हैं, वो सोते रहते हैं। अब सोते रहते हैं, इसको अलग किया जा रहा है योग निद्रा शब्द से। हम लोग कौन सी निद्रा में सोते हैं? तमोगुण की निद्रा में, जिसमें हम अपने को भी भूले रहते हैं, बाहर क्या है अभी भूले रहते हैं। लेकिन योग निद्रा में भगवान अपने को कभी भूलते नहीं है, उनको सब मालूम रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब कुछ पता रहता है। वितन्वतः मतलब विस्तार करते हैं अपनी शक्ति से। और हाँ, मतलब जो मतलब यही है, मतलब ये कि लोग योग निद्रा में रहते हैं। इसको ऐसे समझाया जाता है कि पूरा जगत जो है ये भगवान गर्भोदकशय विष्णु के स्वप्न की तरह है। भगवान बस वहां पर इच्छा करते हैं और उस मतलब लेटे लेटे ही सब कुछ क्रियान्वित हो जाता है। हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन हमारे संग ऐसा होता नहीं है, हमने कर्म करने पड़ते हैं। भगवान की इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि हो जाती है। हाँ, ये भी एक प्रश्न, ये बात हमने बोली थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान आते हैं गर्भोदकशय विष्णु के रूप में आते हैं, वो देखते हैं अच्छा नहीं है, फिर चले जाते हैं। इसी में पूरी सृष्टि हो जाती है, उसी में पूरी सृष्टि हो जाती है। हाँ, उनका टाइम जितने देर में आए और बैठे विस्तार किया वापस चले गए, उतने में पूरी सृष्टि हो जाती है। और हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है ये समझाने के लिए। एक क्षण के लिए जो आकर बैठते हैं और देखते हैं ये जो जगत है वो किसी काम का नहीं है। कल ही हम चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी की, वो बोले अमेरिका में एक बहुत बड़ा कूड़ेदान देखा था, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस पूरे भौतिक जगत को उस कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, किसी काम का नहीं एकदम। देखिए, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत का अनुभव है वह तो समझ ही लेगा ना कि क्या कूड़ादान है, किस कूड़ेदान में हम पड़े हुए। तो उस प्रकार से बोल रहे थे हम, वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि योग निद्रा में जब भगवान रहते हैं तो क्या करते हैं? नाभि हृदय अंबुज आसीद। आप बड़ा स्पष्ट समझ जानते हो, भगवान की नाभि, भगवान विष्णु की नाभि की हृदय जो सरोवर है, जो कहां पे है? भगवान की नाभि में। उस नाभि से एक कमल प्रकट होता है जिस पे ब्रह्मा जी होते हैं, जो विश्व सृजनपति, जो विश्व के सृष्टा के रूप में स्थापित होते हैं। श्लोक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कौन से वाले भगवान के बारे में बात कर रहे हैं? गर्भोदकशय विष्णु, जो कहां रहते हैं? गर्भ सागर में के जल में स्थित रहते हैं, वहां वह शयन करते रहते हैं, अपनी योग निद्रा का विस्तार करते हैं। ध्यान देना चाहिए कि निद्रा उनको नहीं पकड़ती है, वह एक लीला है उनकी, उसमें योग निद्रा को अपने को विस्तारित करते हैं। और उस समय आप देख रहे हो क्योंकि नाभि कमल से, नाभि कमल मतलब जो नाभि सरोवर में उत्पन्न हुआ है कमल, उस कमल में के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, और वो जो कमल है वह ब्रह्मलोक कहलाता है, उसी कमल को ब्रह्मलोक कहते हैं। ये सब बातें हैं। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। पुरुष मतलब कारुणोदकशय विष्णु अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। ये तीनों ही पुरुषावतार कहलाते हैं, कारुणोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और शिरोदकशय विष्णु। उन बड़े पुरुष के, ये छोटे छोटे पुरुष तो नहीं कहना चाहिए, उसी अंश में कह रहे हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और उस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तात्पर्य मेरे ख्याल से अब तो बहुत आसान होगा समझना, मैं पढ़ता जाऊंगा, जब समझ में नहीं आएगा तभी मैं वर्णन करूंगा कुछ, नहीं तो बहुत ईजी है। परम पुरुष, प्रथम पुरुष कारुणोदकशय विष्णु हैं। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष उन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदकशय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदकशय विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। स्पष्ट है? समझाना तो नहीं है? अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, मैं मेरे लिए तो बहुत इजी लग रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है सब? ठीक है, कहां गए थे? ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। इस कमलनाल, ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? जितने भी देवता हैं उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है और वह ब्रह्मा जी सभी लोग क्रिएटर हैं एक अंश में, लेकिन ब्रह्मा जी इसमें सर्वश्रेष्ठ है, ये बात बोली जा रही है। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग को ये कमल की लाल दिखाई पड़ रही है, अगर आप कार्यक्रम के बाद एकदम पास जाके देखेंगे तो जितने भी ग्रह मंडल हैं वो इसके अंदर हैं। ये बात समझ में आ रही है? जो कमल की नाल है उसके अंदर ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट बाहर का मतलब बाहर प्लैनेट्स बाहर नहीं है इसके। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको, देखिए हमारा परसेप्शन लगेगा, हम सोचेंगे कि भाई सारे ग्रह तो हर जगह विस्तारित हैं, लेकिन वस्तुतः जो जो वैदिक एविडेंस है वैदिक शास्त्र के अनुसार वो जो कमल लाल है उसी में सारे ग्रह स्थित हैं। उनको 14 भुवन कहा जाता है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। मतलब अगर एक सीधी सीधी नाल देखी जाए तो उसको 14 भाग में आप डिवाइड कर दें, डिविजन उस तरह से नहीं, फिजिकल डिविजन नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसी कैसी सुविधा प्राप्त है उसके अनुसार 14 लेवल है। लेवल समझ में आता है आप लोगों को? स्तर है। तो उनको 14 ग्रह कहा जाता है। हम लोग पृथ्वी के वाले भाग में से बीच में हम लोग हैं इस प्रकार से, उससे ऊपर उच्चतर लोक हैं। विश्वास होता है आप लोगों की? ऐसा लगता है खाली कहानी सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी इस पर बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं सामान्य व्यक्ति के लिए तो साइंटिस्ट जो बोल रहा है वो भी सुन के स्वीकार करना पड़ेगा। साइंटिस्ट की बात पे तो आप मतलब वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, और श्रीमद् भागवतम की बात भी सुन के स्वीकार करना पड़ेगा। बस ये बात है कि श्रीमद् भागवतम सत्य है और जो साइंटिस्ट है वो आप ही की तरह, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वो आप ही की तरह अपूर्ण व्यक्ति है। वह भी अटकलबाजी कर रहा है कि बम विस्फोट हुआ और पूरा विश्व मतलब पूरा जगत की सृष्टि हो गई। यह स्वीकार करना भी बहुत बड़ी मतलब बहुत श्रद्धा चाहिए आपको स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जगत में हम कहीं नहीं देखते। ऐसे आज सुंदर प्रसाद था, आप क्या माता जी कितने बम फोड़े आपने राइस दाल राजमा, ऐसा क्या कोई भी नहीं स्वीकार करेगा ना कि बम फूट करके प्रसाद में बनता है, कभी नहीं स्वीकार करेगा। तो एक तरह से भगवान का ये मखौल बनाना हुआ ना, सृष्टि करता है, इतने सुंदर सृष्टि करी है और को कहो कि बम फोड़ करके हो गया तो ये जानबूझ करके सृष्टि करता को काटने की बात आ रही है। तो इसको स्वीकार करना भी श्रद्धा की आवश्यकता है कि नहीं? आपने तो कभी देखा नहीं ऐसे हुए तो हम हाँ साइंटिस्ट बोल रहे होंगे, सही बात बोल रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छा है कि वह शास्त्र की बात स्वीकार करे कि वो बात सही है। हमको श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी दोनों जगह, लेकिन शास्त्र की बात सत्य है क्योंकि अन्य आचार्यों ने भी इसको प्रमाणित किया, अनुभव किया, ये बात है। यस प्रभु।
तो साइंटिस्ट दिखाते हैं हमको कि ग्रह के ऊपर वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है उसके ऊपर,
केवल वीडियो दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं। यही तो बात है कि आंखों से जो देख रहे हैं उस बहुत विश्वास कर लेते हैं। ये ही तो हमारी ट्रेनिंग है, क्योंकि देखिए क्या है, बचपन से हम लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाई गई है तो मन में इस प्रकार की श्रद्धा जम जाती है। अन्यथा अगर हम बचपन से शास्त्र पढ़े तो वो शास्त्र की बात समझ में आती है। एक मुझे शास्त्र का मतलब उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक महान आचार्य हुए और महाभारत की कुछ भाग को पढ़ रहे थे सृष्टि के संबंध में, पृथ्वी के संबंध में, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे ये सारे जो जितने कॉन्टिनेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, महाद्वीप है, वह एक खरगोश के समान है। उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर उनको भगवान ने दिव्य अवस्था में कुछ रिवील किया किस प्रकार से सारे चीजें हैं जो एक खरगोश के समान है। तो बाहर हमको बाहर रूप से नहीं समझ में आता है, और हमको यह भी समझ में नहीं आता हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। नहीं समझ में आता ना, लगता तो नहीं है, हम आंखों पर बहुत विश्वास करते हैं लेकिन हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए जो शास्त्र की बात है वह हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बात है। बाकी तो हम तो देख नहीं रहे कि बम फटा कि नहीं फटा या गर्भोदकशय विष्णु है कि नहीं है, लेकिन शास्त्र की बात स्वीकार करके हम समझेंगे तो सही रास्ते पे है, भले अभी उनको समझ में ना आए, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। दिस कॉल्ड शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा कहलाती है। और कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी कैसे हो शास्त्रीय श्रद्धा, ये बहुत गंभीर बात है, सुनिए इस चीज को। ये अभी हम लोग, हमारे भक्त ने शेयर किया था, ये भक्ति संदर्भ से जीव गोस्वामी जी कहते हैं, जब हृदय में पाप होता है, हृदय शुद्ध नहीं होता है, तो व्यक्ति को शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती। और जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र सुनता जाता है, भक्तों के संग में जप करता रहता है, सहज रूप से उसकी शास्त्र में श्रद्धा होने लगती है। सहज रूप से, ऐसा नहीं कि मतलब अपने को इंटेलेक्चुअली कन्विंस कर रहा है, वो सहज रूप से श्रद्धा होती है कि भागवत सही बोल रही है, भगवान सही बोल रहे हैं, कुछ सही है, और कुछ कुछ अनुभव भी प्राप्त होने लगता है। ये हृदय के अशुद्धिकरण की वजह से ऐसा होता है। कुछ आप कह रहे थे,
वैज्ञानिकों की बातों को सहज रूप से हम उसको
हमारे देखिए, वह पहली बात वैज्ञानिक ये कहना कि इस जगत पर कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, क्या ये बात मानी जा सकती है? ये तो कोई सामान्य व्यक्ति भी मान सकता है। अभी मैं बोलते फिर वो एग्जांपल की, जो साधन बना ये अपने आप बन गया, बाय चांस बन गया, क्या आप स्वीकारेंगे इस बात को? हो सकता है कि ये नहीं पता हो कि किसने बनाया है। भाई बहुत सारे आज प्रसादम में आइटम थे, मुझे ये नहीं पता किसने क्या बनाया है, लेकिन एक भी आइटम को आप ये नहीं कह सकते कि अपने आप बन गया। कहीं आप देखते हैं कि मैटर जो है बिना एक जीवित व्यक्ति के सृष्टि कर रहा हो? ऐसा तो कहीं नहीं देखते। कहीं देखते हैं कि बंदर से इंसान आ गए? नहीं देखते। साइंटिस्ट खुद स्पेकुलेशन कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, स्टीफन हॉकिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोला एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिससे सृष्टि हो गई, तो बोलो कि तुम थे उस समय वहां पे? और महाराज भी कई बार बता रहे थे, एक बार उदाहरण में कह रहे थे, सूर्य ठंडा हो रहा है और उसी साल जो है अधिक गर्मी पड़ी। तो कहीं कहीं हम बार बार देख रहे हैं कि साइंटिस्ट के कोई आधार नहीं इस बात को करने का। और वो जितना सृष्टि में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, डिजाइन देखते हैं। डिजाइन देखते हैं कि नहीं देखते आप? तो डिजाइन के पीछे डिजाइनर होता है कि नहीं होता? तो फिर क्यों अस्वीकार कर रहे हो? तो ये जानबूझ करके इस बात को दबाया जा रहा है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्र को सुने। शास्त्र की बात ज्यादा प्रासंगिक लगती है कि इसके पीछे बिहाइंड अ क्रिएशन देर इज नॉट बिग बैंग बट बिग ब्रेन, है ना, ज्यादा लॉजिकल लगता है। लेकिन क्योंकि हम लोग कभी अपने पढ़ाई के समय में सुनते ही नहीं सब बातें, इसलिए हम जो है इसके श्रद्धा रख ही नहीं पाते। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल की जो एजुकेशन है वो स्लॉटर हाउस है, लोगों की सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म कर देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। तो खैर हम उस पर और चर्चा नहीं करेंगे, हम खाली बात ये कर रहे थे कि कमल की नाल के भीतर में ग्रह मंडल है। जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं कि सारे तारे अपने आप में एक सूर्य हैं, तो आपने देखा है क्या कोई? और भागवत क्या बोलती है कि एक ही सूर्य है जो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। तो हम तो एक प्रामाणिक व्यक्तियों की बात सुनना ही ज्यादा अच्छा है कि नहीं? ये तो हमने पहले चर्चा कर चुके थे, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। और आप ये भी देखते हैं कि हम साइंटिस्ट की बात पे विश्वास करें, लेकिन साइंटिस्ट की थ्योरी अगला साइंटिस्ट काट देता है, तो किस साइंटिस्ट की बात पे विश्वास करें? या कोई पीएचडी है क्या? कोई नहीं है। वैसे पीएचडी का डेफिनेशन देते हैं परमानेंट हेड डैमेज, जो थोड़ा दिमाग था वह भी खराब हो जाता है। लेकिन पीएचडी में आदमी करता यही है, जिसने थीसिस लिख दी है उसकी थीसिस को काट देता है पहले। अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो इसी प्रकार से देख रहे हैं कि न्यूटन ने कुछ थ्योरी दी उसको काट करके फिर, मैं बहुत साइंस में नहीं बोलना चाहता, भगवान का गुणगान करने के लिए है, लेकिन यही है कि हम लोग भगवान की बात को, भागवत को स्वीकार करें, वह हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि वो सत्य, वस्तुतः वो सत्य है, स्वीकार करो या ना करो सत्य तो वही है। ये आप इस एंगल से देख पा रहे हैं, आप मानो या ना मानो भगवान कृष्ण हैं, नहीं कृष्ण भगवान हैं, ये कहना चाहता हूं, मानो या ना मानो है कि नहीं। और यह भी दिख रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, मानो या ना मानो, तो ये एकदम सत्य है। अब उसको आपके भगवान उसकी अपेक्षा नहीं कर रही, हमको मान नहीं रहा है तो मैं कुछ करूं उसको अपने संग ले लूं, ऐसा कुछ नहीं। अब हमारी श्रद्धा जो है वह पाप के कारण कभी कभी स्वीकार नहीं कर पाते। भगवान इस बात को बोलते हैं, आपने पढ़ा था ना, चार प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते, उसमें दुष्कृतवान लोग यही हैं कि बुद्धि में, बुद्धि तो है, माया अपहृत ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन माया के द्वारा अपहृत कर लेगा, सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। देखिए चंद्रमा पर जाना यह सब झूठ बोला गया है। अगर कोई कहे कि आप राम रघुपति प्रभु के घर में गए थे कि नहीं गए थे, हमने कहा हाँ, वहां पे एक झोपड़ी थी, वहां पे कुछ नमक के खदान थे और कुछ नहीं था वहां पे, तो क्या स्वीकार करेगा कोई व्यक्ति? वो व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसने वो स्थान कभी गया नहीं हो, जिसके वर्णन प्रामाणिक रूप से सुना नहीं हो, तो चंद्रमा जो है वह जानते हैं कि हमसे बहुत अधिक संपन्न है, तो वहां जाके कह लिए हम तो मट्टी के क्या नाम से बालू लेकर के आए। और यह बताइए, कोई भी आदमी कुछ इन्वेस्ट करता है तो सोचता है बदले में कुछ अच्छा चीज मिले। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए किस चीज को प्राप्त करने के लिए? पत्थर प्राप्त करने के लिए। क्या बुद्धिमानी है? करोड़ों भी नहीं बोलना चाहिए, अरबों रुपए। तो ये सब कहां, ये सब ये केवल भगवान की क्या कह सकते हैं, स्वामित्व सत्ता को चैलेंज करने के लिए बोला जा रहा है ऐसे करके। ये बातें मुझे आज समझ में आती हैं। मेरी दादी बहुत पहले बोली, अरे करवा चौथ करने की क्या जरूरत है, लोग तो चंद्रमा पहुंच गए। मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का देवता कुछ है नहीं, सब झूठ झमेला है इस प्रकार से। तो किस प्रकार से पॉइजन डाला जा रहा है, और बाकी इस पर आप चर्चा कर सकते हैं कि वो चंद्रमा पे कभी गई नहीं, झूठ बोलते वो इस प्रकार से। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि हम लोगों को शास्त्र की बात स्वीकार करनी, ठीक है। इस कमललाल के हमने पढ़ लिया। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है, और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। ये तो सब स्पष्ट है, मेरे लिए स्पष्ट है। आप लोग समझ पा रहे हो? कठिन हो रहा है। पृथ्वी जो है वो बीच का लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, उसके ऊपर और महर लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये जितने ग्रह मंडल ऊपर वाले हैं, नीचे सुतल लोक, तलातल, वो सब छह प्रकार के लोक नीचे हो गए, ये ऊपर नीचे हो गया बस। पृथ्वी ग्रह मंडल की नीचे की ओर सात अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। एक छोटा सा कमेंट असुर पे है कि असुर को पता है कि भगवान कौन है, लेकिन मानूंगा नहीं उनकी बात। उनको पता है कि विष्णु भगवान हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे। हमारे संग दिक्कत यह है कि हमको पता ही नहीं कि भगवान कौन है। मानस समाज में देवताओं को क्या है, ऊपर जाएंगे तो देवताओं को पता है भगवान कौन है, उनकी बात मानेंगे। बीच में बहुत डाउट रहता है यहाँ पे कि भगवान है कि नहीं, निराकार है या साकार है, इस प्रकार से। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। गर्भोदकशय विष्णु से शिरोदकशय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि कहलाते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांडों के सारे अवतारों का विस्तार होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी अवतार भगवान के यहाँ पे आते हैं, वह शिरोदकशय विष्णु के विस्तारित अंश होते हैं, जैसे कि परशुराम और जितने भी अवतार, इनका वर्णन अभी आगे आने वाला है। और जब हम श्लोक आएगा तब वह स्पष्ट कर देंगे कि एतः चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने भी अवतार हैं, ये है इन पुरुष, इन शिरोदकशय विष्णु के विस्तार है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है ये स्वयं भगवान है। उसका वर्णन हम अलग से विशद रूप से जब श्लोक आएगा तब करेंगे। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार तीन रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदकशय विष्णु, जो महातत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदकशय विष्णु हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे शिरोदकशय विष्णु हैं, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर से समराइज कर देता हूं। महातत्व, किसी को याद है कि महातत्व क्या होता है? महातत्व क्या होता है? आप तो सब सीख गए। वाह, देखिए वाह, गुड, अच्छा, सब सीख रहे हैं। महातत्व मतलब एक अव्यक्त स्थिति जिसमें भौतिक सृष्टि होती नहीं है, बिल्कुल रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बैलेंस पे रहते हैं। उस पर कौन दृष्टिपात करता है? कारण दकशय विष्णु। वह प्रकृति को एजिटेट करते हैं, वह आगे सृष्टि होती है। तो इसको सर्ग कहते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं, यानी कि देवताओं की सृष्टि और आधे सभी के शरीरों की सृष्टि। तो बड़ा स्पष्ट है जब ये कह रहे हैं कि जैव हो या अजैव, सबके परमात्मा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हर परमाणु में भी रहते हैं और हर जीव के हृदय में भी रहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक से जानता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगी तत्वता, इसको आप सुन चुके हैं। ये मुझे स्मरण आ रहा है, प्रभुपाद छत कोट भी करेंगे कि जो इन तीन विष्णुओं के रूप जानता है, विष्णु पुराण से उक्ति है, तो वह बंधात्म प्रमुचित, वे बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सबको सीखना बहुत जरूरी है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, ये तो बड़ा स्पष्ट है, तो इसलिए मैं केवल पढ़ रहा हूं, जिससे तुरंत महातत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है, जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसलिए कारण सागर कारणार्व कहलाता है। इधर समझिए इसको, आज कोई नींबू का पेड़ आप देख रहे हैं तो उसका बीज कहीं ना कहीं डाला है ना, कभी नींबू का पेड़, हम फार्मिंग एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 साल के बाद ही फलित होता है। तो आज आप अगर फल देख रहे हो तो क्या, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, आज आप उसका फल देख रहे हैं तो आज क्या आप उसका बीज देख रहे हैं? बीज नहीं देख रहे, लेकिन आप अगर उसके फल को देख रहे हो तो क्या सीधे सीधे अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके पीछे बीज रहा होगा? और मैं कहूं ये बाई चांस हो गया है तो क्या सही है? और उस बीज को आरोपित करने वाला भी एक व्यक्ति है कि नहीं? सीधी सीधी बात, अब बताइए कौन सही बोल रहा है, साइंटिस्ट सही बोल रहा है कि शास्त्र सही बोल रहा है? अब लॉजिक भी लगाएंगे तो ये इतना जगत की सृष्टि जो फल के रूप में है उसके पीछे कोई जीवित व्यक्ति होगा, सीधी सीधी बात। अब वो कौन है वह हम शास्त्र से जानते हैं, लेकिन तर्क से भी हम सोचें तो उसके पीछे जरूर एक व्यक्ति होगा। मेक सेंस? ठीक। और कारण सागर को कारणव सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी जगत की सृष्टि का कारण यही है। ठीक है, हमारे जिसको हम गंगा जल कहते हैं वह भी कारण सागर का जल है, यह हमने बताया था, आपको याद है? जब भगवान वामन देव ने पांव मारा था तो वो यूनिवर्स का में से एक छेद हो गया और उससे वो जला है। तो लोगों को ये सब कपोल कल्पना लग सकता है, लेकिन कपोल कल्पना नहीं है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इससे ये भी समझ में आता है कि हम किसी सामान्य से व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, रुक्रम भगवान की कर रहे हैं। हमें मूर्तावश सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवद्गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है, नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता। भौतिक प्रकृति में ये बात आप पढ़ेंगे भगवद्गीता के आसुरी और देव स्वभाव में, जिसमें वो कहते हैं कि क्या है श्लोक, किमन्य काम है तो कम, इस जगत में कोई ईश्वर नहीं है और केवल काम ही इस जगत की सृष्टि का कारण है। देखिए, जब कोई कहे कि भाई हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, बेसिकली वो कहना चाहता है कि मैं उसके नियमों को नहीं मानता, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, ये कहना चाहता है। लेकिन उसका हिसाब देना पड़ेगा उसको, हर व्यक्ति को देना पड़ता है। कभी कभी लोग सोचते हैं यमराज केवल हिंदुओं के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी धारणा है। यमराज जी बड़े सेक्युलर हैं, सेक्युलर समझ धर्म निरपेक्ष, सबका बैंड बजाते हो, चाहे मुसलमान अपने आप को मानता हो, चाहे वो क्रिश्चियन मानता हो, चाहे हिंदू मानता हो, उसमें कोई वह भेदभाव नहीं रखते, सबको बराबर से ठंडा कर देते हैं। तो जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है उसकी पिटाई करते हैं, तो यहाँ कितना भी हल्ला करे लेकिन बाद में उसकी पिटाई होती है। ठीक है, तो सिद्धांत अच्छा नहीं मिलता है भौतिक प्रकृति में। एक्चुअली जानते हैं होता क्या है, जब आप लोगों को ऐसे ट्रेनिंग दे दो, बेसिकली ब्रेन वॉश कर दो, तो कुछ सोचेंगे ही नहीं। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, अब बताइए कभी भी हम लोगों को सोचने के लिए ट्रेनिंग दिया गया है? Isn't it? रट लो उगल दो, रट लो उगल दो, अच्छे से उगल के नहीं आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए उगलने में? अच्छा उगला इस बार इसने। और जो टीचर वह भी देखता है, वो कभी कभी मैंने सुना है कि हाथ से नाप लेते हैं, अच्छा उगला, इतना उगला है, ठीक है, इतना उगला, इतना नंबर दे दो, कितना फॉर्मेलिटी के तहत ना, उसमें इसमें नंबर प्राप्त करके खुशी होने का भी क्या फायदा? और आप यह देख रहे हैं कि भक्ति की एजुकेशन में बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि आप सीखिए, द एम्फेसिस इज ऑन लर्निंग, नॉट सिंपली कि घुट्टा मार करके पास कर दिया। इसे मान ली शुद्ध भक्ति की बात है, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन केवल सीखना ही संभव नहीं है, जीवन में अप्लाई करना है, अनुकूल कृष्णानुशीलनम, अनुशीलनम करना है, ऐसे नहीं बस रट लिया और कहें बोल दिया, अगर अच्छे शब्द क्या है, और छोड़ दिया बोलना और सब ठीक है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, कल ही चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद जी मैं 45 मिनट में पूरी गीता बोल सकता हूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम क्या एक श्लोक भगवद गीता का 45 मिनट के लिए अपने जीवन में जी सकते हो? और चुप हो गया और चला गया। तो ये जीना बहुत जरूरी है ना शास्त्र को, ये बात है। तो लोग सोच, यही सब ट्रेनिंग दी जा रही है। कभी भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है, जिस प्रकार के प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित के बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती है। पुरुष गर्भधान करता है, प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। ये हिंदी समझ में आ रही है? बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार, मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक तत्व अपने आप में कोई सृष्टि नहीं कर सकते। कोई कहे भी राजमा की सब्जी खाई, हाँ राजमा अपने आप ही कुकर में बैठ गया, अपने आप ही उबल गया, अपने आप ही आंच लग गई, क्या कोई स्वीकार करेगा इस बात को? आप में से कोई व्यक्ति ईमानदारी से बताइए, स्वीकार कर लेंगे आप कि जो रोटी बनी और अपने आप ही उसमें पानी आ गया, अपने आप ही सब बंद गया? हर चीज के पीछे एक जीवित व्यक्ति है। ये बहुत सिंपल सी बात आप प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यही चीज बार बार साइंटिस्ट के विपरीत बोलते हैं कि किसी तरह से हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन करके, मटेरियल कॉम्बिनेशन करके हम लोग जीवन का निर्माण कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है। आप लोग हो सके तो प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िएगा, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। आप लोगों ने पढ़ा है पुस्तक? बहुत अच्छा पुस्तक है, हम अगली बार आपको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहते हैं कि भौतिक तत्वों में सृजन की शक्ति नहीं है, उसके पीछे कोई जीवित व्यक्ति होता है। अच्छा, सृजन की शक्ति भौतिक तत्वों में नहीं है, लेकिन विध्वंस करने की शक्ति तो हो सकती है ना?
वो भी नहीं है।
जीवित व्यक्ति के बिना विध्वंस करने की शक्ति भी नहीं, उसके पीछे भी एक व्यक्ति है भाई। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं बम फूटेगा तब बोलेंगे बाई चांस है, तुरंत खोज चालू जाती कौन उग्रवादी था, उसके पीछे कौन कौन लोग थे। तो हर व्यक्ति देख रहा है कि किसी भी घटना के पीछे एक जीवित व्यक्ति होता है। सिंपल। इस संबंध में बहुत ही गंभीर बात एक भक्त बोल रहे थे। हम लोग कितना उसको क्या कहें, इंग्लिश में कहेंगे वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं इट इज सो स्पेशल दैट ही कैन लुक बैक एट अस। अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो कितने आश्चर्य की बात है कि आप भी मेरी तरफ देख रहे हैं। कुछ स्पेशल लग रहा है, कुछ में नहीं लग रहा? नहीं समझ आई बात आपको? मैं ऐसा नहीं कि मैं यहां पे 8-10 लैपटॉप इकट्ठे कर लूं और उनको भगवदगीता का प्रवचन देना चालू कर दूं। जीवात्मा कितना विलक्षण है, हम लोग कॉन्शियस हैं, इस विलक्षणता को भी हम समझ नहीं पा रहे। नहीं, आप लोग को मेरी बात बुरी अच्छी या उदासीन लग सकती है, क्या इस माइक को कुछ भी लग सकती है? ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपको लगा है नॉर्मल सी बात है, लेकिन कोई ये हारमोनियम देख सकता है मेरी तरफ? क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वस्तुओं से हम आसक्त हो रहे हैं, जबकि प्रेम हमको जीवों को करना चाहिए, भक्तों को करना चाहिए। कई बार लोग वस्तुओं के प्रति आसक्त होकर अपने संबंधों को ध्यान नहीं देते। इसे सो सिम प्रेम हम केवल जीवित लोगों से कर सकते, और वस्तुतः खुश हम तभी होंगे जब उन लोगों के संग रहें जो हमसे प्रेम करते हैं, जिनसे हम प्रेम कर सकें। वस्तु इकट्ठी करने से सुखी नहीं हो सकते। पता नहीं समझ में आ रही की बात नहीं, अरे हो शायद। इसीलिए तो भगवान ने जगत की सृष्टि करी है भाई, ये तो पता है ना आप लोगों को। ठीक है, चूंकि भगवान की इच्छा ध्यानमग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और उनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं, यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय है। मुझे लगता है इसमें कुछ भी समझाना नहीं है, बहुत आसान था। अब हम लोग थोड़े कठिन वाले श्लोक को देखते हैं। कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही? हाँ
हाँ,
आप ये कह रहे हैं कि प्रश्न यह है कि कारण दक्षा विष्णु के शरीर से सारे ब्रह्मांड निकले ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए, इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, भौतिक शक्ति हमेशा रहती है, उसको भगवान एक्टिवेट करते हैं। तो भगवान ने जो ब्रह्मांड उत्पन्न किए वह तो भौतिक हैं, तो वह कहां से आए? भगवान का शरीर तो चिन्मय है, तो एग्जैक्टली कैसे हुआ ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान की जो शक्ति है ये हमेशा रहती है। माया शक्ति शाश्वत, आप जानते हो, बस वह सुप्तावस्था में रहती है। तो जब भगवान ने इच्छा करी कि भौतिक जगत की सृष्टि हो, जो यही तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, और उससे भले उनके शरीर से प्रकट हुए हैं, लेकिन वो भौतिक सृष्टि, वो भौतिक शक्ति के द्वारा ही प्रकट हुए, उसको भगवान एक्टिवेट करते हैं, ऐसे समझ लेना चाहिए। ये अभी तक तो मेरी समझावट यही, ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आपके मन में आएगा, एक तरफ बोल रहे हो कि महातत्व से सबकी सृष्टि हुई है और एक तरफ हो रहा है ब्रह्मांड से सृष्टि हो रही है। दोनों ही बातें सत्य हैं और थोड़ा तो अचिंत्य भी लगता है इसमें। ये जो मैं पिछली बार जब पढ़ा रहा था तभी मेरे मन में आ रहा था कि ब्रह्मांड जो है भगवान से प्रकट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो महातत्व भगवान दृष्टिपात करते वहां से प्रकट हो रहे, तो प्रकट कहां से हो रहे? अब दोनों ही बातें जब भगवान से मिलेगा तो पूछ लीजिएगा, पूरी तरह से मेरे को समझ में नहीं आए। लेकिन इतनी बात जो कमेंट्री में लिखी गई थी वो ये है कि भगवान की भौतिक शक्ति जो है वह शाश्वत होती है। भगवान इच्छा से वह, जैसे आप बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है और वह सृष्टि करती है। कुछ भी मैं स्पेकुलेट करूंगा तो सत्य होगा ये मैं नहीं कह सकता, तो इसलिए मैं इससे अधिक तो नहीं कह सकता और इससे अधिक वर्णन भी नहीं। इसी तरह से वर्णन आता है तो इसी तरह से मैं स्वीकार करना चाहिए। भक्त लोग अच्छा बता रहे थे कि भागवत में बहुत बार ऐसी बातें आएंगी जो बड़ा अचिंत्य हैं। अरे स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भगवान को समझना ये हमारे लिए संभव नहीं है। भौतिक सृष्टि कैसे हो रही है ये हम समझ नहीं सकते। एक मोटा मोटा अंदाजा देने के लिए हम लोगों को भी बता दी जाती बातें, लेकिन जो भी हम सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि तीनों गुण एक ही बराबर अवस्था में थे, तो आप कुछ धारणा कर रहे हैं ना, हाँ कुछ तो है जो बराबर रहा, लेकिन जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कि वो है गुण, गुण वो नहीं है। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? जो भी हम सोच रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण सत्वगुण होता है, जो भी सोच रहे हैं उससे तो वो गुण अलग ही है ना, वो अचिंत्य है। जब पूछा गया था कि माया शक्ति क्या है 11वें स्कंद में, तो माया शक्ति का वर्णन नहीं किया गया, माया शक्ति के प्रभाव का वर्णन किया गया, क्योंकि माया शक्ति भी भगवान की तरह ही अचिंत्य है। तो इसलिए बड़ा कठिन है समझना, लेकिन हम अपने शुद्धिकरण के लिए इतना समझ लें कि भगवान सृष्टि करते हैं, उससे अधिक तो मैं समझ नहीं पा रहा। स्वीकार करना ज्यादा अच्छा है बजाय झूठ बोलने के लिए, है कि नहीं? तो समझना चाहिए, इसी प्रकार से समझना चाहिए। ये सब श्लोक बड़े कठिन हो जाते हैं सृष्टि वाले, उसके बाद वाले थोड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, यस्या अव्यव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम् विशुद्धम सत्वमूर्जितम्। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है। यस्य अव्यव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः, कुछ लोग ये जो 14 भुवन मंडल हैं इनको भगवान के अंगों के रूप में धारणा करते हैं, इसे विराट स्वरूप कहते हैं, विराट स्वरूप। लेकिन भगवान कह रहे हैं तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम्, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है गर्भोदकषाय विष्णु का, शिरोदकषाय विष्णु का, वो उनका ऐसा भौतिक स्वरूप नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इसको आप फिर से पढ़ेंगे जब दूसरा स्कंद की शुरुआत के पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, इसका वर्णन आता है। कुछ लोग भगवान के विग्रह के, दिव्य विग्रह की धारणा नहीं कर सकते हैं, भगवान के अचिंत दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते, तो वह सोचते हैं कि भगवान का ये जो ब्रह्मा जी का जो स्थान है वह भगवान का सर है, इस प्रकार से ध्यान करते हैं, और कहीं ना कहीं भगवान से थोड़ा संबंध है इसलिए वे धीरे धीरे शुद्ध होते हैं और भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप की वह धारणा कर पाते हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं है, ये तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान विष्णु जो है पूरी तरह से विशुद्ध सत्वात्मक है, वह माया से बिल्कुल भी उनका संबंध नहीं होता है। सारे श्लोक आज के बड़े सिद्धांतिक हैं, बड़ी सुखी सुखी लग रही, क्लास कोई लीला नहीं आ रही है, लेकिन पढ़ना चाहिए शुद्धिकरण कर लिए, ठीक है। हम लोग भक्त लोग ऐसा नहीं धारणा करते हैं, इसलिए हम लोग केवल सुन लेना चाहिए कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं। जैसे मुझे सर बता रहे थे एक बार कि कोई एक माता जी थी बिट्स पिलाने में, तो उनको भगवान का ये जो विराट स्वरूप है ये बड़ा अच्छा लगता था। कृष्ण स्वरूप उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन विराट स्वरूप बड़ा अच्छा लगता था। तो कुछ लोग विराट स्वरूप के प्रति बड़े आकृष्ट होते, तो वो लोग उस पर ध्यान करें, धीरे धीरे भगवान के कृष्ण स्वरूप पे वह ध्यान करने के लिए योग्य बन जाते हैं। इसलिए यहां बोल रहे हैं कि भगवान का जो विश्व रूप है, विराट स्वरूप अर्थात जो ग्रह मंडल भगवान के शरीर में अवस्थित माने जाते हैं, वह भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? शुद्ध सत्व का है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कल्पना करते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें का मतलब भगवान को, उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो बड़ा स्पष्ट है तात्पर्य। हम तात्पर्य पढ़ें या हम लोग क्या करें? बाबू को बोरिंग तो नहीं लग रहा है सब कुछ? नहीं, ठीक। जब ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं, मतलब जो चीजें आसान होंगी उसको मैं फिर नहीं एक्सप्लेन करूंगा। परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। ये मैंने भी आपको समझा दिया था। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है, अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। देखिए इस लाइन थोड़ा समझाना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति रूप की धारणा करता है तो सोचता है कि वह भौतिक रूप होगा, तब क्योंकि वह भगवान के आध्यात्मिक रूप की संकल्पना नहीं कर सकते हैं, भगवान का आध्यात्मिक रूप कैसा होगा, चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप कैसा होगा, वह नहीं सोच पाते हैं। इसलिए उसको समझाने के लिए कि भाई भगवान देखो, तुम इस प्रकार से भगवान को देखो कि जो ब्रह्मा जी का जो लोक है वह उनका चेहरा है, उसके बीच वाले लोग ऐसे हैं, और जितनी नदियां हैं वो उनकी क्या कहते हैं नसें हैं। इस प्रकार की धारणा की जाती है, और आप देखेंगे कि भक्तों को इस प्रकार की धारणा के लिए कभी नहीं बोला गया। आपको यही बोला गया कि श्याम सुंदर है, कृष्ण है, उनके आंखों का स्मरण कर सकते हैं, चरणों का स्मरण कर सकते हैं। तो भक्त लोग पहले से ही उच्चतर अवस्था में, लेकिन कुछ योगी इस प्रकार की धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा है, लेकिन भगवान की का स्वरूप इस प्रकार से नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महातत्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। ये तो बस स्पष्ट है। एक तरह से भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महातत्व भगवान से भिन्न भी है। ये भी समझ में आया? ये थोड़ा समझा देता हूं, ये सबको समझ में आएगा। देखिए अचिंत भेदाभेद तत्व को थोड़ा समझा जाए। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर आश्रित रहती है, उसी से आती है, तो उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। लेकिन वह वस्तु अगर दूसरी वस्तु से अलग है तो भेद दिखाई पड़ रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि बादल और सूर्य में भेद है तो आप मानेंगे? है, स्पष्ट है। और मैं कहूं कि बादल और सूर्य में अभेद है तो मानेंगे? बादल सूर्य से आया है, इस दृष्टि से अभेद है, लेकिन आप जानते हो कि बादल और सूर्य में बहुत भेद है। उसी प्रकार से भौतिक सृष्टि या भौतिक तत्व कहां से आए? भगवान से आए। तो अब ये कहो कि जो भगवान से आए हैं इसका मतलब भगवान ही है, तो यह सही नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? शुद्ध सत्वात्मक। कैसा है? शुद्ध सत्वात्मक, मतलब रजगुण तमगुण इसको हटा दें, जब सतगुण बचता है तो वह विशुद्ध सत्वात्मक हो जाता है ना। मैं आप लोगों के चेकिंग करता रहता हूं कि सही बोल रहा हूं कि सब भूल जाते हैं, जानबूझ के गलत बोल रहा हूं। पहली बात यह कि रजगुण तमगुण में से कभी भी पूरी तरह से, मतलब ऐसा जब आप छांट करके सतगुण निकाल लें ऐसा कभी नहीं हो सकता। माया के गुणों में हमेशा मिश्रण रहता है। विशुद्ध सत्वात्मक रूप जो है वह पूरी तरह गुणों के परे होता है। तो भगवान का जो स्वरूप है वह कैसा है? विशुद्ध सत्वात्मक। लीलाधर प्रभु भागवत सुने हैं आप? कभी बताया है ये सब बातें? मैं आपको उस दिन बता रहा था ना कि देख लीजिए कितना कठिन अच्छा ये लगता है कि वो आपसे हम लोग भागवती पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, क्या लगता है? और आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये सब बातें क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि लोगों फिर आपकी क्लास में आएंगे नहीं, कहीं कोई लीला नहीं सुनाया, आज तो रुक्मणी जी की शादी हुई नहीं कृष्ण से। तो महाराज बार बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि हमारे पास कंप्लेन आ रही है कि भाई 6 दिन हो गए अब तक रुक्मणी जी की शादी नहीं हुई कृष्ण से। तो लोग केवल कहानी सुनने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम तत्व को समझते हैं तब भगवान की लीला को भी समटी के प्रकार से समझ पाएंगे। इसलिए ये बात पर अभी मैं दूसरे स्कंद में भी पढ़ रहा था, जब भगवान की महानता को हम समझते हैं तब हमारी श्रद्धा भगवान में बड़ी पक्की हो जाती है। नहीं तो हम सोचेंगे जैसे कृष्ण है वैसे अन्य कोई देवता है, शिव जी भी वैसे ही हैं, ब्रह्मा जी भी वैसे ही हैं, तो फिर श्रद्धा नहीं ठीक प्रकार से हो पाती। तो हम बात कर रहे थे अचिंत्य, माया पूरी तरह से भगवान से अलग है, बिल्कुल जड़ है, लेकिन भगवान पूरी तरह स्पिरिचुअल है। लेकिन क्योंकि माया भगवान से आई है इसलिए उस दृष्टि से माया का अभेद है, अन्यथा माया और भगवान में बहुत भेद है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आएगी तो आपको बड़ा स्पष्ट रूप से समझ में आता है बात। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के रूप नित्य रूप से अभिन्न है। एक मिनट, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया क्या बात बोल रहे हैं। फलस्वरूप भगवान की शक्ति तथा भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। अब समझ में आ रहा है भिन्न और अभिन्न? ठीक है। इस तरह हां बोलने के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। भगवान की शक्ति भिन्न है भगवान से, ये समझ में आ रहा है? माया शक्ति जड़ है और भगवान से अलग है, ये समझ में आ रहा है? और भगवान से आई है, ये समझ में आ रहा है? तो जब आई है तो भगवान से अभिन्न हो गई उस दृष्टि से, मतलब सिद्धांत के रूप से, और भेद तो आपको दिख ही रहा है। नहीं, अच्छा लेकिन प्रश्न है वो, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप कह रहे हैं माता जी का प्रश्न ये है कि क्या इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक का अंतर नहीं है? वह जीव के संग में यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न किया, इसको भी क्लियर कर लीजिए। जीव भगवान से गुणात्मक रूप से एक है, ये बात मानते हैं? सच्चिदानंद जीव भी है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन मात्रात्मक रूप से भेद है कि भगवान जो है विभू है, अनंत है, और जीव जो है वो अणु है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि समानता क्या है, कि दोनों हमेशा एक व्यक्ति रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुक्त हुआ तो आप भगवान में लीन हो गए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। इस प्रकार की इच्छा रखना मूर्खता है, कभी हो ही नहीं सकता कि आप भगवान में लीन हो जाओ। आप अविनाशी हो, आपका नाश कभी नहीं हो सकता, भले आपका जॉब का नाश हो जाए लेकिन आपका नाश कभी नहीं हो सकता। कभी मर सकते हैं हम लोग, बजेंद्र प्रभु सॉरी बजराज प्रभु मर सकते हैं हम लोग? आप कौन है? हाँ समझ में आई बात, सीधी सीधी बात, हम कभी नहीं मर सकते। ठीक है, देखिए हम लोग सुनते कई बार लेकिन चिंता बहुत करते हैं, कैसे चलेगा, कैसे जीऊंगा, चिंता ये करने चाहिए कैसे मरूंगा, मर तो सकते ही नहीं है, इज़न्ट इट, कैसे क्या होगा। जब भी थोड़ा व्यक्ति अगर आत्मा के रूप में सुने, इसलिए सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो जो जो परेशानियां आपके जीवन में आपको लग रही कि बहुत बड़ी परेशानी है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, वो सब इन शब्द कहते हैं बेमानी हो जाता है। बेमानी समझते हैं? यूजलेस। मैं एक भक्त को पूछा, फिरोज आपकी निंदा कर सकता है कोई? आपको क्रिटिसाइज कर सकता है कोई? अरे कितना कितने सारे कर सकते, अरे पहले देखे तो सही आपको, फिर तो निंदा करेगा। वह तो हमारे जड़ स्वभाव की निंदा कर रहा है। अब हमारी परेशानी ये है, वो पूछ रहे थे मन कैसे है जो है हमारा शत्रु हो जाता है। हमारे आपके कोई आपको आपकी कोई प्रशंसा कर सकता है? बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। कौन सुंदर लग रहा है? और वाकई शैली सुंदर है क्या? उस पर तो उसमें तो कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छा है। हाँ, अरे कुछ लोग तो अगर यह भी बोलते हैं भाई आपकी जैकेट बहुत अच्छी है, तो हम क्या, हमें क्या लगता है, हम उसके पीछे सुन रहे होते हैं आवाज कि मैं बहुत अच्छा हूं। वो बोल रहा है जैकेट बहुत अच्छी है, जैकेट तो मैंने बनाई नहीं है, जैकेट तो मैंने सीली नहीं। ये हमारे मन की बहुत बड़ी मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति है और इसी के पीछे पूरा जीवन हम व्यर्थ करते रहते हैं। कई बार मैं गृहस्थ भक्तों से पूछता हूँ, इतना कमाने की जरूरत तो है नहीं? तो बोले कमाने की जरूरत जीने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए ज्यादा जरूरत है कि नहीं? हम में से ब्रह्मचारी तो बहुत कम लोग हैं, बाकी सब तो गृहस्थ आश्रम में है ना, दिखाने के लिए। और ये सब कारण क्यों हो रहा है? मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से, माया के द्वारा हो रहा है कि हम शरीर मानते हैं उसका फिर जगत में दिखाते रहिए, पूरी एनर्जी उसमें वेस्ट कर देते हैं। आप लोग कहेंगे प्रभु जी इतने गृहस्थ आश्रम के विरोधी नहीं है, हम किसी की किसी आश्रम के विरोधी नहीं है, वो चेतना के विरोधी है। हम इस जगत की नहीं है भाई, इस जगत के बिल्कुल नहीं है, हमको भगवान के धाम जाना है। ये बात क्लियर रखनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो। एनी हाउ पॉइंट पे आ रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि भिन्न और अभिन्न है, तो ये जीव भी इस प्रकार से क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति ही भेदाभेद प्रकाश। तो यहां भी भेदाभेद समझ में आ रहा है, जीव में और भगवान में भेद है बड़ा स्पष्ट, और अभेद किस दृष्टि से है कि गुणात्मक दृष्टि से भगवान के भी है और प्लस भगवान से आए हैं, भगवान पे आश्रित है। इस तरह विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का यह नित्य रूप महतत्व की सृष्टि के पहले से विद्यमान रहता है, और यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान की नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य। एक बात ध्यान देने वाली, हम लोगों ने भक्ति वृक्ष में भी सीखा था, स ऐक्षतः बहुस्यावा, उन्होंने देखा और वे बहुत हो गए। जब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा, अर्थात उस समय सृष्टि तो हुई नहीं थी, आप ये पॉइंट कैच कर रहे हैं, भगवान ने जब देखा तब उस समय सृष्टि हुई नहीं थी। तो देखा मतलब उनकी आंखें हैं, इसका मतलब उनकी आंखें दिव्य हैं, जबकि भौतिक सृष्टि भौतिक है। क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हैं आप? समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? कोई नहीं समझना चाहता है? बहुत सिंपल सी बात है, ये उपनिषद की बात है, सैक्षता बहुत श्यामा, मैं बहुत हो जाऊं। उन्होंने इच्छा करी और उन्होंने देखा, तो जब देखा तब तो जगत नहीं था। आप लोगों ने वो सुना होगा भारत एक खोज, क्या जो शुरुआत में आता था, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं था, लेकिन ये गलत है, सृष्टि के पहले भगवान थे, ये बात समझने वाली। इसलिए लोग बड़ा, और जब भी आप इस तरह का गाना सुनेंगे तब कुछ धारणा होगी निर्विशेष की, लेकिन निर्विशेष नहीं था, भगवान थे। ठीक है, हर जगह जो है निर्विशेषवाद फैला हुआ है बहुत ज्यादा। आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं, यही दिव्य रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता है, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है, उसमें महतत्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। देखिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य की बातें लिख रहे हैं, जितने भी अवतारों का वर्णन अभी आगे आने वाला है उसको सुनने से क्या लाभ बताया जा रहा है कि व्यक्ति दुख ग्रामा विमुच्यते, दुख के समूह से मुक्त हो जाता है। तो यहां हमें अंतर देखते हुए चलना पड़ेगा कि जितने भी अवतारों का वर्णन होगा उनके जो शरीर है वह गुणों से प्रभावित नहीं है, गलत बोल गया, गुणों से प्रभावित नहीं कहना चाहिए, गुणातीत है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो इनका जो वर्णन सुन रहे हैं, इनके गुणों का वर्णन करेंगे तो हमारी अविद्या का नाश होता है, और जगत के लोगों का वर्णन करते हैं तो हमारी अविद्या से बढ़ जाती है। ये बात ध्यान देना चाहिए। इतना आपको समझाने का कारण क्या था कि जो महतत्व है उससे पूरी जगत की सृष्टि होती है, लेकिन इस जगत में जो भगवान के अवतार आ रहे हैं वे पूरी तरह दिव्य हैं। मैं रिपीट करूं, समझ में आ रही है? ये जगत में जो भी वस्तु आप देख रहे हो वो कैसे बनी है, महतत्व से ही बनी, ओरिजिनली आप कह लीजिए महतत्व से बनी है, लेकिन जितने भी भगवान के अवतार आ रहे हैं वह उस वस्तु से नहीं बने। ये एक मेजर मिस्टेक है जो लोग करते हैं, भारत में भी करते हैं, वो सोचते हैं कृष्ण के राजकुमार थे और उनको भगवान बना दिया, या श्री राम एक राजकुमार थे उनको भगवान बना दिया। भगवान बनाए नहीं जाते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। ये बात अगर कोई समझ जाएगा तो वह निश्चित रूप से मुक्त होगा। आप लोगों को इसलिए आसान लग रही है क्योंकि आपको परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नहीं तो बाहर के लोगों से आप पूछिए, अच्छा आप में से कितने लोग ये बात थी पता थी कि भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो वो दिव्य शरीर से आते हैं, दिव्य स्वरूप में आते हैं? कुछ नहीं बताता। यह तो हम लोग, हम सभी लोगों पे असीमित कृपा है परंपरा की कि हम समझ पा रहे हैं, इसीलिए और भगवान इसी बात को बोलते हैं कि अगर ये व्यक्ति समझ जाए तो वह निश्चित रूप से दोबारा जन्म नहीं लेगा। किसी को पता है श्लोक? जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवेति तत्व थाईसम, तत्व में सीख रहे हैं कैसे भगवान हैं, किस प्रकार सृष्टि करते हैं, ये तत्व में जानने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए जीवन बना है। तत्व में हम मैथमेटिक्स जानेंगे तो मुक्त होंगे कि नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तत्व में अगर भगवान की लीला को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए ही अपने जीवन में भी प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस तरह से समझाना चाहिए कि वो समझ सकें इस तत्व को। आज बहुत तत्व हो गया या एक श्लोक तो मैं जरूर पढ़ूंगा, चाहे आप लोग बेहोश हो जाएं चाहे कुछ भी, लेकिन क्योंकि इसके बाद जो है फिर अवतार की कथा चालू हो जाएगी, वो हम अगले हफ्ते करेंगे। हाँ जी गुरु जी, देखिए जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मान लीजिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो गुण से प्रभावित नहीं होते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा शरीर पूरी तरह से अभी स्पिरिचुअल हो गया है। ये शरीर मतलब जड़ पदार्थों से बना है लेकिन ये स्पिरिचुअलाइज्ड हो रहा है भक्ति करते करते। लेकिन जब भगवान के स्वरूप प्रकट करते हैं तो वे अंतरंग शक्ति के द्वारा ही प्रकट करते हैं, वे कभी भी भौतिक जगत की भौतिक वस्तुओं का संपर्क होता ही नहीं, जैसे नारद जी का शरीर है या अवतारों का शरीर है की बात है जो सब यहाँ पे सुन रहे हैं। कब वो इसको आप लोग पांचवें स्कंद में पढ़ेंगे, ऋषभदेव कहते हैं इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, ये जो मेरा शरीर है इसकी धारणा करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्विभाव्य, समझ नहीं पाते लोग। तो ये बात है, इस प्रकार से जो भगवान के अवतार है वो पूरी तरह शुद्ध सत्वात्मक वपु को शरीर को प्रकट करते हैं। ठीक ओके, अब इनको कौन देख पाते हैं तो उसको बोल रहे हैं पश्यन्त्यदो रूपमदभ्र चक्षुषा सहस्त्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्त्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम् सहस्त्रमौल्यंबर कुंडलोलस। देखिए पहला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है पश्यंती। पश्यंती मतलब एक आदमी नहीं, वो बहुवचन, बहुत लोग देखते हैं। तो कोई कहे किसने भगवान को देखा है, पश्यंती बहुत सारे लोग देखते हैं। अदो अदह मतलब इन पुरुष के रूप को कौन लोग देखते, अदभ्र चक्षुषा मतलब पूर्ण चक्षुओं से। इसको श्रीदत्त स्वामी कहते हैं कि ज्ञान चक्षु, मतलब भक्ति करके व्यक्ति भगवान को देख पाता है, ऐसे कह सकते हैं भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। सहस्त्र पाद उरु भुजान अद्भुतम, उनकी हजारों पाद मतलब चरण है और भुज आनन, आनन का मतलब होता है मुख, भुज मतलब आप जानते हो हाथ, और अद्भुत उस रूप को देखते हैं। सहस्त्र मूर्ध, मूर्ध का यहां पे क्या अर्थ प्रपात है, सिर, और श्रवण का मतलब कान, अक्ष मतलब आंखें, और नासिकाओं के संग देखते हैं। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं, वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये यहाँ पे भगवान यहाँ पे अंतर दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने दृष्टि को शुद्ध कर चुका है वह भगवान का दर्शन कर सकता है। इससे पहले उन लोगों का वर्णन हुआ जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी कल्पना कहाँ कर रहे हैं, विराट स्वरूप में। अब यहां उनका वर्णन हो रहा है कि जो भगवान को देख पाते हैं उनकी योग्यता क्या है। तात्पर्य, हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हम ये थोड़ा समझना चाहिए, देखिए भगवान को देखने का अर्थ क्या है, भगवान को इस पे तो पूरे हम पास्ट टाइम सुना सकते हैं, लेकिन भगवान को देखने का अर्थ है भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करना। तो जब तक हृदय में भक्ति नहीं होगी वह भगवान को इस प्रकार से नहीं देख पाएगा, या फिर कहे जितनी मात्रा में भक्ति होगी उतनी मात्रा में वह भगवान का अनुभव कर पाएगा। चाहे भगवान का नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण है, वह सब कुछ मधुर है, लेकिन अगर व्यक्ति का हृदय अशुद्ध है तो वह समझ नहीं पाएगा। एक भक्त हमको बोल रहे थे प्रभु जी इतना अच्छा लग रहा है माला करने में, सो लगता है सोलह माला करके ही उठूं, ऐसा करके भात आ रही थी। और उसी समाज में कोई ऐसी व्यक्ति हो सकता है जो कहे आज मैं आपके मंदिर क्यों ज्वाइन किया, रोज सोलह माला करनी पड़ती। तो दोनों में है, दोनों ही लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, लेकिन हृदय की शुद्धि के कारण की वजह से वह हरि नाम का अनुभव अलग प्रकार से कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे अरे भागवत मुझे क्यों पढ़नी है, हमने जपा रेस में रीडिंग रेस भी जोड़ दिया है। यानी कि पहले सोच रहे थे जपा रेस ही बहुत भारी पड़ रही थी, 16 माला नहीं हो रही थी, अब ये रीडिंग करने के लिए भी बोल रहे हैं, कहाँ में फंस गया ये लोग। ये वैष्णव लोग बड़े चालू होते हैं, पहले बोलते हैं 1 माला करो, फिर कहते हैं 2 करो, फिर कहते हैं 16 करो, फिर कहो दीक्षा ले लो, फिर कहते हैं पढ़ाई करो। मैं तो फंस गया, मैं अपना भौतिक जीवन बर्बाद कर लिया इन लोग चक्कर। लेकिन हम देख रहे हैं कि कठिनाई होती है लोगों को, कहीं ना कहीं लगता है बड़ी आसानी से हम न्यूज पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, लेकिन गीता उठा के नहीं पढ़ी जाती। और ऐसा भी नहीं कि आप नहीं जानते कि महत्व क्या है, फायदा क्या है। कोई बात नहीं, एक संकल्प जरूर लेना चाहिए, कम से कम एक श्लोक तो हमें जरूर पढ़ना है। दवा की तरह, दवा क्या हमेशा हम इस तरह से लेते हैं भाई अच्छी लगेगी तो अब लेंगे, और धीरे धीरे आप, आपका दिन बीतेगा नहीं कि कुछ भगवान के बारे में ना पढ़े। जब ये श्लोक आएंगे ना, आप लोग का मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। आगे श्लोक जब नारद जी बोल रहे हैं, मैं उसको अभी पढ़ा नहीं रहा, नारद जी इतनी सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं कि भगवान के बारे में पढ़ने से, सुनने से भागवत धर्म का वर्णन 5वें अध्याय में हो जाएगा। बड़े सुंदर, मेरे फेवरेट श्लोक हैं, उनके वर्णन भगवान ने चाहा जब हम करेंगे, कितना बड़ा फायदा है उसको पढ़ने से। लेकिन एक फायदा वो भी बोलते हैं कि जैसे जैसे हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, हमारे हृदय का सारा कल्मश नाश हो रहा है। प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि जो ये जो पुस्तकें हैं इनको पढ़ा जाए, चर्चा किया जाए, डिस्कस किया जाए, इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तुम क्या पढ़ते हैं आगे? हाँ, माइक पे पूछिए। यस,
एक मेरे रिलेटिव है, 3 घंटे पेपर पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर 3 से 3.5-4 घंटा। वो कहाँ से आता है? मतलब
अविद्या के कारण। हृदय में जब अविद्या होती है तो उसमें वह सोचते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन आप जानते हो कि न्यूज़पेपर में केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को पता है ये बात या नहीं पता है? फिर भी पढ़ते हैं लोग कितने नहीं, आप नहीं पढ़ते, मैं बोल रहा हूं कि जो पढ़ते हैं उनको भी पता है कि वो झूठ है। मैं नहीं कह आपने आश्चर्य आपको जब आप लोग पढ़ते थे, मैं ये बोल रहा हूं, जब आप या लो, आप मैं अभी कोई पढ़ रहा हो कि आपको पता नहीं वो झूठ बोलते हैं उसमें? मोस्टली वो झूठ बोलते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, मुझे कोई इंटरव्यू लेने के लिए आया, उसके बाद इसने इतना बस पढ़ लिया कि मैं मुश्किल से 2 मिनट पूछा कहाँ से थे, IIT से था, बस पूरी लंबी कहानी इसने लिख दी, IIT से थे, IIT में गोल्ड मेडलिस्ट थे ये, IIT में कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता है, कोई गोल्ड मेडल मिलता ही नहीं है। फिर ये यहाँ गए और उन्होंने उनका गीता किया, फिर उन्होंने कहा जीवन समर्पित कर, क्या क्या उनने अपने मन से लिख दिया, तब मुझे समझ में आई लोग केवल झूठ बोलते हैं। लेकिन हमसे इसके विपरीत यही पढ़ने की प्रवृत्ति को भागवत में लगाए तो हमें जानते हैं एक एक अक्षर जो है इसका वो पूर्ण सत्य है। ये विचार करने वाली बात है, एक एक अक्षर पूर्ण सत्य सुन रहा है। और ये भी आप देखेंगे कि जब हम भागवत भगवद गीता पढ़ते हैं, बहुत बार हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, स्पेशली अगर वो हमारी आसक्ति को नहीं, आसक्ति पे कुठाराघात होता है। प्रभुपाद बोलते नहीं, इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए, तो हम बोलता क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो भले ही वे हमको कड़वी लगे लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक भक्त बोले, इंग्लिश में बोले, पहले मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा कि आई मे बी ए ग्रेटेस्ट रास्कल बट एटलीस्ट आई एम हियरिंग व्हाट इज द ट्रूथ। तो कहने करती है कि मैं एक नंबर का नलायक हो सकता हूं लेकिन क्लास में बैठा हूं तो सुन तो रहा हूं ना कि सत्य क्या है, तो धीरे धीरे कोई बात समझ में आ जाएगी। हाँ भाई, कुछ तो कान में चुपकेगा कि हरे कृष्णा करना है, भजन करना है, भक्ति करना सीखना चाहिए, तो सुनना बहुत जरूरी। तो हम बात ये कर रहे थे कि भौतिक इंद्रियों से भगवान को हम नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे सूर्य सामने उपस्थित हो लेकिन अगर दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो तो सूर्य कितना दिखाई पड़ेगा आपको? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जितनी मात्रा में मोतियाबिंद हटेगा उतनी मात्रा में दिखाई पड़ जाएगा। तो ये जो भक्ति का प्रोसेस है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही है। मैं कहा से आप समझते होंगे सब बातों को, ठीक। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही दिव्य रूप भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इसको बोला गया है गीता में, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदो जना तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपः। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझको वैसे जाना जा सकता है जैसा मैं हूं, यानी अनन्य भक्ति के अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे मोतियाबिंद ठीक हो, हम भगवान को समझ पाए। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ठीक, इस तरह वेदों में भी पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। किसी को श्लोक पता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमशाम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत सुंदर बात है और आप लोग कृपया बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। कभी कभी लोग भ्रमित करते हैं भक्तों को कि अरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे तो श्रेष्ठ है कि किसी साधु से सुना जाए। सुना है आपने उससे बातें कभी कि शास्त्र से कोई जरूरत नहीं है, साधुओं से सुनो, सब शास्त्र से ऊपर है साधु। लेकिन श्रीमद् भागवतम में उच्च कोटि के साधुओं के अनुभव के अलावा कुछ रखा ही नहीं गया है। समझ में आ रही बात? जो साक्षात भगवान को देख रहे हैं वह अपना अनुभव रखे हैं बचपन भागवतम। श्रीमद् भागवतम ये अनुभूति ग्रंथ है, रियलाइज्ड नॉलेज है ये। नहीं समझ में आ रही बात? तो आप भागवत को अलग नहीं कर सकते हैं। कोई साधु बोले तो भागवत के आधार पर बोले, बाहर नहीं बोले। बहुत आवश्यक है। अगर हम भ्रमित नहीं होना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। अरे भाई चालान होता है तब तो हम पूछ लेते कहां लिखा है। बहुत बार होता है ना, कौन सी लॉ के अनुसार आप बोल रहे हैं, ऐसा होता है। ये ट्रेन में टिकट कटता है तो अरे कौन सा नियम आप यहां से आ गया, तब तो हम प्रश्न करते हैं। लेकिन कोई साधु बोल रहा है तो हम प्रश्न भी नहीं करते कि क्या शास्त्र से है या नहीं है। शास्त्र का सामने रख के ही बोलना चाहिए। शास्त्र कोई सूखे व्यक्ति चीजें नहीं है, शास्त्र मुख्य है। फिर गुरु साधु उसको पुष्ट करने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन शास्त्र छोड़ करके नहीं समझा सकते। अभी मुझे किसी व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी एकादशी में आप योगा कर रहे हो, योगा करने से एकादशी भंग हो जाती है। हमने अच्छा, हमने किसने बोला, उस प्रभु ने बोला या उस महाराज ने बोला। मैंने कहा अच्छा उनने कहां से बोला। मैंने कहा आप, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप शास्त्र अगर कोट नहीं करेंगे तो मैं कैसे आपकी बात मान सकता हूं। तो ये बात देखना चाहिए। और एक बात ये भी है इसमें, श्लोक क्या है, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन छुरित, मतलब जैसे अंजन समझते हैं आप लोग काजल, तो आंखों में काजल लगा रहता है तो वह आंखें दिख पा, आंखों में दृष्टि बढ़ जाती है। ऐसे जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन होता है वैसे संत साधु पुरुष सदैव भगवान को देखते हैं। मैं बहुत पहले प्रश्न किया था, 16 साल पहले, वो प्रश्न मुझे याद भी याद है। प्रभुपाद जी ने भगवान को देखा क्या? तो बोले प्रभुपाद ने देखा नहीं, प्रभुपाद जी हमेशा देखते रहते थे, तब भी हजम नहीं हुआ। तब उन्होंने उत्तर दिया श्लोक का कि जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए भगवान हमेशा दिखते हैं। अब जिसको मोतियाबिंद है वो तो कभी सूर्य को नहीं देख पाएगा, लेकिन आप लोग के लिए सूर्य क्या देखने कोई कठिनाई है? हमेशा दिखाई पड़ते हैं सूर्य, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जब प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं दिखते हैं, अगर प्रेम है तो भगवान हर जगह दिखते हैं, हृदय में भी दिखते हैं। तो ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी किस तरह से बोल रहे हैं? अपनी अनुभूति से बोल रहे हैं, उनको प्रेम प्राप्त है इसलिए भगवान को देख पा रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि हम अगर भगवत कृपा से पढ़ेंगे उसको दूसरे स्कंद में, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते कि मेरी सृष्टि का स्रोत कौन है, मेरे अस्तित्व का स्रोत कौन है, और बहुत प्रयास करके भी समझ में नहीं आता। इसी कमल की नाल में नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे कोई समझ में नहीं आता, तब उनको सुनाई पड़ता है दो शब्द, भोग भोग करो ना भवनी तप करो तप। अगर ये सुनाई पड़ता भोग करो तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन वस्तुतः ये नहीं सुनाई पड़ा तप। तो आप प्रश्न नहीं करते कि भगवान स्वयं अपने आप को क्यों नहीं तब ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित कर दिए? क्योंकि उनमें सामर्थ्य ही नहीं भगवान को देखने का जब तक हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे। तो इसलिए अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, तपस्या का अर्थ जरा कोई भक्त बता सकते हैं? एक माइक पे बताइए, सबको सुनाई पड़ जाए अच्छे से, धीरे धीरे बताइएगा। हाँ, पहली चीज
वह क्रिया जो हमें अच्छी ना लगे,
पहली चीज वह क्रिया जो हमको अच्छी नहीं लगे क्या है, इसका पहला गुण क्या है? वो अच्छी नहीं लगे। ये फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या इसका गुण है? अच्छी नहीं लगे। एक बार और, अच्छी नहीं लगे। तो तपस्या का पहला गुण ये है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप ये कहो प्रभु जी मेरा मन नहीं करता जब करने का, मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह उठना, इट इज नॉट मेंट टू बी गुड फॉर यू, इट इज नॉट मेंट टू अपियर गुड टू यू, आपको अच्छा लगने के लिए है ही नहीं, फिर तपस्या कहां कहां जाएगा उसका। दूसरा आगे क्या पांडे तपस्या, जो हमको अच्छा नहीं लगे बस वो तपस्या है, ये तो नहीं है सर। दूसरा है हम स्वेच्छा पूर्वक करें, और तीसरा है वह हमारे लिए अच्छा हो। तो क्योंकि है कि हमको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, जब करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर ठीक है, फिर तो पशु बने रहो, क्या कर सकते हैं। लेकिन कृपया ध्यान दीजिए, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। अगर ये शुद्ध हमने थोड़ी सी तपस्या कर ली, हरे कृष्ण मंत्र की, भागवत पढ़ने की, भक्ति करने की, जितनी जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध हो गया, और अगर पूरी तरह हृदय शुद्ध हो गया तो असीमित सुख प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ना भूलिए, मैंने पिछली बार ही बताया था कि जब हमारी दृष्टि फल पर रहती है कि मुझे ये इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मैं तपस्या पे ध्यान नहीं देता। और आप देख सकते हो भक्ति की तपस्या कोई कठिन भी नहीं है। जो लोग सुबह उठ रहे हैं उनके लिए सुबह उठना बड़ा स्वाभाविक हो गया होगा, ना उठना तपस्या हो जाता है। नहीं, किसी दिन बीमार हो गए, 7 बजे 8 बजे उठना पड़ गया, तो वह कठिनाई लगती है, एक अपने आप में सुख मिलने लगता है भक्ति करने के लिए। तो इसलिए इससे मैं क्यों बोल रहा हूं, जब तक हम भक्ति की तपस्या के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध नहीं करते हैं, भगवान सामने भी होंगे तो भगवान को देखने का सुख अनुभव नहीं होगा। जैसे दुर्योधन के भगवान सामने थे कि नहीं थे, नहीं, बिल्कुल उसको पसंद नहीं आया। जरासंध के सामने थे, और क्या नाम है एक उनका जो शिशुपाल, शिशुपाल के सामने भी थे, लेकिन भक्ति नहीं थी, उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। जैसे क्यों भक्तों, सबको आज की खीर और हलवा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब अगर इनमें से किसी एक को जॉइंडिस होता तो कहता है क्यों, और बाकी लोग दबा दबा के खा रहे हैं, और ये लोग क्यों इतना खा रहे हैं। तो ये है भौतिकतावादी लोगों की कठिनाई, कहते हैं ये लोग इतने हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं, भागवत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जंडे से प्रभावित है, उल्टी कर दे रहे हैं इनको, क्या गंदी चीज है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करके सुखी हो जाता है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर लेता है, तो इससे अच्छी कोई वस्तु नहीं है। और ये मैं कई भक्तों के अनुभव देखकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे आश्रम में भक्त थे, वो बोल रहे जितना मुझे प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के बड़ी सुख मिलता है, पहले नहीं मिलता था। मैं भी जैसे प्रभुपाद जी ग्रंथों को अब देख पा रहा हूं, वैसे पहले नहीं देख पाता था। तो ये दिखाई पड़ता है कि हमारा टेम्परेचर वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं इस बात बोल रहा हूं कि तपस्या करना चाहिए, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, अतएव हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। बहुत सुंदर बात है। केवल संस्कृत पढ़ करके कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। मुझे क्या नाम है, तनुजा माता जी बता रही थी कि संस्कृत खूब पढ़ चुकी है, सारे उपनिषद पढ़ चुकी थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया भगवान कौन है। प्रभुपाद जी के जब ग्रंथ पढ़े उन्हें, तब उनको समझ में आया कि भगवान कौन है। इसीलिए भगवान को समझना है तो ऐसे व्यक्ति से समझें भगवान का अनुभव किया है। इसीलिए हम परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैंने तो नहीं किया अनुभव, लेकिन प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुभव के अनुसार हम चलते हैं। एक सेंस थी। ठीक है, इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन लोगों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने उन्हें पहले से देखा है या कुछ काम किया। ये तो बड़ा स्पष्ट है। यदि दुनियवी, क्या लिखा है इसमें, दुनियवी का अर्थ क्या होता है? यदि अच्छा दुनियावी मतलब दुनिया की वस्तुओं के अनुभव किए जाने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह पूरी तरह लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके संबंधी उनके विविध स्वरूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षितों के लिए वह स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। इस तरह को समझाऊंगा, फिर रुकते हैं। देखिए, यह सबका अनुभव है कि शुरुआत में कुछ भी समझ में नहीं आता है कि नहीं, और फिर समझ में तो आता है लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता, और फिर समझ में भी आता है और याद भी रहता है। तो इन सभी के पीछे भक्तों का धैर्य रहा है। नहीं समझ में आ रहा, जाके बैठे तो सही है कि नहीं, और हरे कृष्ण मंत्र का हम बड़े धैर्य पूर्वक जप करते रहे, तो धीरे धीरे हम स्वयं ही अपने चेतना में शुद्धिकरण का अनुभव करेंगे। आप में से बहुत से भक्तों को अब मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये तीनों विष्णु के नाम याद हो गए, क्या उनके फंक्शन है वो याद हो गए, और अपनी स्थिति को याद कीजिए। जब बिल्कुल आप पहली बार क्लास में आए तो ये भी समझ नहीं आ रहा था बोल क्या रहे हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। याद आ रहा है, कुछ भी याद नहीं रहता है। इसको उदाहरण समझाऊंगा तो इससे आपको दिखेगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इससे आपको दिखेगा कि भक्ति का प्रोसेस एक विज्ञान है और अगर हम इसको ठीक से करते हैं तो हमको सफलता निश्चित प्राप्त हुई है। जब उस स्थिति से उठ करके हम यहां पे आए हैं तो यहां की स्थिति से उठ करके हम लोग आगे भी प्रगति करेंगे। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये वृंदावन चंद महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इसको आप ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। वो कह रहे थे कि जैसे ये फर्श है, तो फर्श पे आप अगर पांव की छाप मारेंगे तो कुछ समय बाद बहुत जल्दी गायब हो जाती है कि नहीं। सूखी धूल पे आप पांव रखोगे तो कुछ समय रहेगी लेकिन वो गायब हो जाती है, और कीचड़ में अगर पांव रख देंगे तो बिल्कुल जम जाता है। तो जब हमारा चित्त तमोगुण से प्रभावित होता है तो फिर वह सुनता है बातों को लेकिन वो धारण नहीं कर पाता, समझ ही नहीं पाते। रजगुण से धीरे धीरे शुद्ध हुए तो रजगुण में आए तो समझ में तो आती है बातें लेकिन फिर भूल जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा चित्त जो सत्वगुणी होने लगता है तो फिर हमको बातें समझ में भी आती हैं और हम मतलब याद भी रख पाते हैं उन बातों को। तो इस प्रकार से बड़े धैर्य से अगर हम इस तपस्या को करते रहें हरे कृष्ण मंत्र की जप की, तो हम ये अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अब हम कुछ बातें भगवान के नाम के संबंध में कह रहे हैं, कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं संबंध में। मेरे ख्याल से सब लोग कर ही रहे होंगे कि देखिए भगवान का नाम का जप केवल एक क्रिया मात्र नहीं है, एक व्यक्तिगत संबंध है भगवान से। हम किस प्रकार से भगवान को इंग्लिश में कहेंगे ट्रीट करते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, भगवान से व्यवहार करते हैं जब वो हमारे नाम अपने हमारे जीव पे नाम के रूप में आते हैं, उस बात का हमारे भक्ति के जीवन में प्रगति पे बहुत निर्भर करता है। तो जो व्यक्ति आप लोग जो लोग सब साधना कर रहे हैं, मैं बार बार आप लोग को लगता है प्रभुजी इतना क्यों पुश करते हैं कि सुबह करो ये ध्यानपूर्वक करो, हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने एक चीज आपको शेयर किया था, शायद आप समझ नहीं पाए या ध्यान नहीं दिया। देखिए 16 माला करने में उतना ही समय लगता है, चाहे हम घिसपिट के करें चाहे बढ़िया से करें, बस सत्य है कि नहीं, 2 घंटा लगता है। अगर हम बड़ी एकाग्रता से करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो हमारा ये जो भगवान से अममत्व है कि मतलब जगत के लोग मेरे हैं और भगवान से मेरा कोई संबंध नहीं है, जो कि झूठी बात है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसी कहते हैं डिजॉल्विंग ऑफ फॉल्स ईगो। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, मैं शरीर हूं और शरीर संबंधित लोग मेरे हैं और उनके लिए मुझे अपना जीवन समर्पित करना है, लेकिन हरिनाम के प्रभाव से जगत के संबंध हम निभाते हैं लेकिन यह याद रहता है कि मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कई बार हम आपको बोलते हैं कि हम लोग भगवान के हैं, तो लोग स्पेशली गृहस्थ आश्रम में कोई रहे या कोई किसी भी आश्रम में, तो वह सोचेगा कि निराशक्ति का मतलब है सूखापन, कोई पत्नी का ध्यान ना रखे या बच्चों का ध्यान ना रखे। यह बात नहीं की जा रही है। वैष्णवता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा हृदय सूख जाए, मेक सेंस और डजंट मेक सेंस। वैष्णवता का अर्थ है कि हमारे संबंध और प्रगाढ़ होने चाहिए लेकिन उसका केंद्र कृष्ण होना चाहिए, मेक सेंस। अनित रूप गोस्वामी जी क्यों बोलते हैं, गिफ्ट देना गिफ्ट लेना, अपने हृदय की बात को कहना, हृदय की बात को सुनना, लेकिन हृदय की बात ही नहीं। प्रभु जी उस भक्त ने बड़ा बुरा कहा है, आई वॉन्ट टू शेयर माई हार्ट टू यू, ये नहीं भगवान के संबंध में आके। जैसे मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं इस मामले में, लेकिन बहुत भाग्यवान मानता हूं कि हम रोज गीता की चर्चा कर सकते हैं। हमारा पूरा गैंग है गीता गैंग, सब 4-5 भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग 1-2 श्लोक रोज चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा 20-25 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, वह शाम को बड़ा हमको संतुष्ट करता है। और इस तरह से एटलीस्ट मैं महसूस करता हूं कि भक्तों से बड़ा अच्छा संबंध स्थापित होता है। ये रियली ये डोंट माइंड, लेकिन गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी दुविधा है, दुविधा नहीं क्या कहेंगे उसको, शब्द नहीं, परेशानी नहीं, मतलब ये डिसएडवांटेज है। तो यहाँ सब लोग बेचारे सब इधर फंसे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता कि सब लोग शाम को आके कीर्तन करें, कुछ क्लास वास करें, यह एक मतलब बहुत बड़ी असुविधा है ऐसा कहना चाहिए। हम लोग संग बहुत अच्छा है, मृदंग प्लेयर भी हैं, हारमोनियम वाले भी है, साउंड सिस्टम भी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये मैं खाली बोल रहा हूँ, कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर आना चाहिए ताकि हम लोग भक्त संघ में आकर के इस प्रकार से भगवान के बारे में चर्चा करें। ये हमारी भक्ति में श्रद्धा को बहुत बढ़ाता है, बल्कि भक्ति में श्रद्धा का एकमात्र स्रोत ही यही है कि भगवान के भक्तों का संग करें। साइड पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दिस इज हाउ वी बिकम एनलाइवेंड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्तों से संबंध किया हम आध्यात्मिक जगत में जाके, मैं हूं और कृष्ण है, मैं उनका दास हूं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अब गोलोक में सब लोग भगवान के केंद्र में रख करके उनके आपस में बहुत प्रेम होता है कृष्ण को केंद्र में रखकर। तो ये निराशक्ति की बात इस तरह में की जा रही है कि अगर कोई भक्त नहीं है तो हम उससे दूर रहें, लेकिन अगर वो भक्त हैं तो हम हमेशा सोचें कैसे मैं उनको भक्ति में और अधिक मदद कर सकता हूं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये भी मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब हम दूसरों को प्रचारित करते हैं तो हम स्वयं अधिक कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो इसको अलग ना देखिए, अगर आप किसी को भी कृष्ण भावना देने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको जरूर कृष्ण भावना भावित होना पड़ता है। ये कहा जाए कि कृष्ण भावना देने के प्रोसेस में आप स्वयं अधिक कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो ये आपकी भक्ति में हानि नहीं कर रहा है किसी तरह से, बल्कि और बढ़ाता है। मैं यहां रुकूंगा, कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं, तो कीर्तन करेंगे। यस माता जी, माइक दीजिए माता जी। नहीं नहीं कोई नहीं, पूछ लीजिए
आप। प्रभु जी, मेरे को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है, हमने तो प्रभुपाद जी की ही भगवद गीता छुई है, तो ये जो और जो भागवतम वाले होते ना सिर पर लेके जाते हैं और एक ही भागवतम रखते हैं, तो क्या उन दोनों के श्लोक तो सेम ही होंगे?
आप भगवद गीता की बात कर रही
हैं? सॉरी, भागवतम की। जैसे प्रभुपाद क्या, तो भागवतम 18 बुक्स में है, 12 कैंटो है, लेकिन जो जनरली देखते हैं हम लोग, मैंने देखी नहीं, वो एक समझ ही गया, होती समझ है।
वो जो देखिए एक भागवतम रखते हैं उसमें केवल संस्कृत के श्लोक होते हैं, उसमें टीका अनुवाद इत्यादि कुछ नहीं होता। प्रभुपाद जी ने जो 18 वॉल्यूम्स में दिया उसमें कमेंट्री है, अनुवाद है।
परपट होने से ये बुक्स बढ़ते
हैं। अब सोचिए ना, अभी हम लोग केवल अनुवाद भी पढ़ते तो क्या समझ पाते।
बहुत कंफ्यूजन था, मैंने कब पर
प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि कोई अनुवाद पढ़ेगा तो 5% प्रगति, लेकिन अगर परपट पढ़ेगा तो 95% प्रगति, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छी बात दीन बंधु प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी जब अनुवाद करते थे इन पुस्तकों का रात के समय, तो कोई व्यक्ति उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो प्रभुपाद जी का वह जो बहुमूल्य समय था, वह पूरे विश्व में वह अपने तात्पर्यों के द्वारा अपना संग दे रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति कुछ लिखता है या उसका शब्द है, उसके द्वारा हम उसका संग करते हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करेंगे। और इस बात को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हम सब लोग कनिष्ठ हैं, भगवान की भक्ति में श्रद्धा उतनी पक्की नहीं है, तो हमको कम से कम मध्यम या उत्तम जो भक्त होते हैं उनसे सुनना चाहिए। तो अब हम जब प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, आपको अनुभव भी होगा कैसे लग रहा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, आप कहीं आगे तात्पर्य पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल। तो जब हम प्रभुपाद जी से नियमित रूप से सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाती है, और नहीं तो भक्ति में अस्थिरता रहती है। करना है आज, नहीं करना है आज, करना है कर नहीं करना है, ऐसा करके। इसीलिए मैं अब थोड़ा फोकस ये कर रहा हूँ कि भक्त लोग नाम जप के साथ साथ कम से नियमित रूप से जरूर पढ़ें। और जैसे आप लोग एक साथ रह रहे हैं तो अगर अच्छा होगा सब लोग साथ में आके पढ़ें, तो बड़ी आसानी से अगर साथ में रह के पढ़ना चाहते हैं प्रयास करेंगे तो 40 मिनट कहाँ निकल जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा। अकेले ना भी पढ़ सके, साथ में आके पढ़ सकते हैं, इस तरह से नियम बनाना चाहिए, इससे हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, देखिए हम पहली बार नहीं देख रहे भक्तों गायब होते हुए, और शायद आपने भी देखा होगा भक्तों गायब होते हुए, उम्मीद है कि हम अपने आप को गायब होते हुए ना देखें कि नहीं। तो गायब होने का कारण यही होता है कि लोगों की श्रद्धा नहीं रहती कि भाई भक्ति करके हमारा जीवन सफल होगा, है ना। तो ये नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो फिर बात पक्की होती है। और कोई प्रश्न है किसी का? शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अगले श्लोक थोड़ा